शुचिपुत्रमत्रस्वरूपम् रूपम् तस्याग्रजभुरिपुरीं माथुरीं गोष्ठवाटीं राधाकुण्डं गिरिवरमहो राधिका माधवासं प्राप्तो जस्य पथितकृतया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धोभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरद्विषे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालयै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप मह्यं कदा ददाति शपदान्ति आददानस्तेणं दन्तैरिदं याचे पुनः पुनः श्रीमदरूपदाम्भोजधूलि श्यान्मन्जन्मन् जन्म। परम पूजनीय हमारे भट्टो जी पद्मनाभ गोस्वामी जी त्रिदंडी पादगण वैष्णवगण वैष्णवीगण, आज 850 हो चुका है, अभी आरती भी बाकी है और हमने बहुत कुछ सुना। हमारे आयोजन करने का मुख्य लक्ष्य यही है कि वृंदावन के परम तत्वज्ञ रसिक एवं भावुक भक्त लोग आए और उनके मुख से हम कुछ भक्ति रस का आस्वादन करें। मैं समझता हूं कि इसमें मैं सफल रहता हूं। हमारे भक्त लोग भी कहां कहां से यहां पर उपस्थित हुए हैं, सारे विश्व के लोग यहाँ पर हैं, सारे भारतवर्ष के लोग हैं, यहाँ के लोग हैं। ग्रंथों का अनुसृजन करने वाले, देखिए अभी आपके सामने हमारे परम पूज्यपाद कृष्ण चैतन्य बोध कैसे सुंदर सुंदर उपदेश दिए, रूप गोस्वामी की कैसी सुंदर महिमा का वर्णन किया, तत्पश्चात आपने वो पंडित जी लक्ष्मी पंडित जी थोड़े में ही गाबर में सागर उन्होंने भर दी। हमारे अच्युत लाल भट्ट जी तथात में ही हमारे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के परंपरा में यथात में विद्वान रसिक विद्वान है और तत्त्वज्ञ हैं। कैसे सुंदर सुंदर विचारों का इन्होंने विश्लेषण किया। आप लोग पहली बार ये सब चीजें सुन रहे हैं, प्रतिवर्ष आते हैं नए नए रूपों में अपने विचारों को रखते हैं। हमको थोड़ा सा उसमें थोड़ी सी कुछ और भी जानने की उत्कंठा हुई। मान लिया कि कोई साधक रूपानुग भजन करता हुआ, रूप गोस्वामी के चरणारों बिंदु के उनके उपदेशों का पालन करता हुआ लोभमयी भक्ति से यदि वो सिद्ध होता है, साधक से सिद्ध हो करके पहुंचता है और वहां पर मंजरी स्वरूप में उपस्थित होता है तो क्या तभी उसको रूपानुग कहा जाएगा, न क्या कहा जाएगा, रागात्मिक भक्त कहा जाएगा। इस विषय को थोड़ा सा हम कल इनसे स्पष्ट करने की मैं चेष्टा करूंगा, क्योंकि वहां तो अब ये शरीर तो रहा नहीं, साधक शरीर तो रहा नहीं, पूर्ण रूप से आत्मस्वरूप में प्रवेश करके मंजरी भाव में रूप रति इत्यादि मंजरियों के आनुगत्य में वहां पर अब सेवा में परिकर हो गया, तो उसमें भी उसे रूपानु कहा, रागानुगा कहा जाएगा या रागात्मी कहा जाएगा। तो ऐसा ये इनको थोड़ा सा विचार करके हम लोगों को समझाना होगा। दूसरी बात थोड़ी से मैं निवेदन ये करना चाहता हूं, हमने सुना है तिरोभाव आविर्भाव अप्रकट, वैष्णवों का तो देह त्याग नहीं होता, उनका अप्राकृत शरीर होता है, दीक्षा काले से ही देह करे आत्मसम से ही देह चिदानंद में इत्यादि सुना जाता है। मैं समझता हूं कि वैष्णव में देह त्याग का कोई विषय ही नहीं, कृष्ण का भी देह त्याग जो सुना जाता है वो वंचना है। किसी भी वैष्णव का मैं समझता हूं कि यदि मध्यम अधिकारी भी हो गया शरीर को वो छोड़ सकता है, जैसे कि हमारे नारद गोस्वामी जी ने अपने प्रापंचिक शरीर को त्याग किया, किंतु साथ ही साथ में उनका अपना सिद्ध शरीर आया भगवत परिकर का। किंतु जो सिद्ध परिकर जैसे रूप सनातन है, इनका तो प्रारंभ से ही अप्राकृत शरीर ही होना चाहिए, उनके तो देह त्याग की कोई भावना ही नहीं रहनी चाहिए। वो तो जैसे कृष्ण लोक वंचना करके अपने स्वरूप से ही अपनी अप्राकृत लीला में प्रविष्ट हो गए, ऐसे ही मैं समझता हूं कि रूप सनातन इत्यादि के लिए या सिद्ध परिकरों के लिए भी कोई देह त्याग की कोई व्याप्ति नहीं होनी चाहिए। वो तो जिस रूप में आए तिरोभाव किया, तिरोभाव माने क्या, छोड़ना नहीं, साथ ही साथ क्या होगा, लोगों को आंख में धूल झोंक कर जोग माया की कृपा से इस जगत से अंतर ध्यान हो जाते हैं, जैसे सूर्य कभी भी अस्त नहीं होते, सूर्य कभी भी नहीं अस्त होते, वो हम लोगों की दृष्टि में अभी ओझल तो हो गए हैं, किंतु सूर्य अस्त होते हैं कहीं, अभी तो है ना, कहीं हैं, इसलिए हमारे आंखों से उस ऐसे रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी इत्यादि के लिए मैं समझता हूं देह त्याग की कोई बात नहीं है। वहां पर आविर्भाव तिरोभाव वहां पर होना चाहिए, इसलिए बड़ी सतर्कता के साथ में हम लोगों को इस विषय में चिंतन करना चाहिए। क्यों विरह मनाया जाता है, रूप गोस्वामी की विरह तिथि हम लोग क्यों मना रहे हैं। सचमुच में हम लोग, इन्होंने बहुत सुंदर बात मार्के की बात बतलाई, आविर्भाव रूप गोस्वामी का हम नहीं मनाते हैं, सनातन गोस्वामी का भी नहीं मनाते हैं, उसके लिए उन्होंने सुंदर विचार भी प्रस्तुत किए, प्रकट के समय में उनकी लीलाओं का उन्होंने जगत के लिए जो कल्याण किया, जो जगत को दिया उपादान दिया, उसमें प्रकटित नहीं हुआ करता है, ठीक है ये बात। अप्रकट के समय में विरह में विप्रलम्ब इसीलिए श्रेष्ठ कहा जाता है, मादन में भी विरह होता है, वो विरह मिलन में ही होता है, किंतु ऐसा कोई भी भाव ऊपर से नीचे तक नहीं है जो मादन के अंदर में जो विरह है उसमें नहीं है, उसमें मिलन की सारी प्रक्रियाएं सारी लीलाएं स्मृति पट में आती है, इसलिए इस महाविप्रलम्ब को ऐसा बतलाया है हमारे साथ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने आया इसने कि सारी मिलन की लीलाओं के ऊपर में भी सिर के ऊपर भी विराजमान रह करके वो विप्रम लीला समस्त लीलाओं का स्मरण करा देती है। आज रूप गोस्वामी के महत्व पर बड़े बड़े विद्वान रसिक भाव लोगों ने जो विचार किए सुन करके दंग रह जाना है, किसी भी संप्रदाय में ये सब बातें नहीं है जो आज इन लोगों ने प्रकाश किया। छोटे छोटे विषयों को लेकर के, एक एक उनके विचारों को लेकर के, एक थोड़े से जैसे इन्होंने लिया, रूप गोस्वामी ने साधक को क्या दिया, बस इसी पर रह करके, और कितने सुंदर विचार उन्होंने प्रकाश किए। हमारे गोस्वामी जी ने, हमारे सभापति अतुल कृष्ण गोस्वामी जी ने एक एक श्लोक और उसका केवल एक ही शब्द लेकर चमत्कार उन्होंने दिखलाया। ये सब चीजें हैं सुनने की, समझने की, इसलिए मैं आयोजन ये सब करता हूं। मैं समझता हूं कि अपने आयोजन में मैं बहुत बहुत सफल हूं। मैं भी रसास्वादन करता हूं, हमारे साथ ये जितने भी भक्त लोग हैं सब राशद। मैं तो समझता हूं कि ऐसी रोज रोज कथाएं हों रूप गोस्वामी की, कभी सनातन गोस्वामी की, अब कभी महाप्रभु जी की, ऐसी हम लोग यदि सुने तो हम समझते हैं कि सब साधनों से जल्दी ये सहज ही उनकी कृपा से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। पढ़ लिख करके नहीं होगा, लाख जन्मों तक हम पढ़े तभी ये सब चीजें नहीं होंगी। सुनने मात्र से परीक्षित महाराज जी कौन सी गति उनकी हुई, 7 दिन उन्होंने सुना किंतु गति क्या हुई, जो अपनी मैया को बृहत भागवतामृत में सनातन गोस्वामी ने बतलाया, अपनी मैया को भी कहा कृष्ण तुम्हारे क्या लगते हैं ससुर जैसे लगते हैं, ससुर मत समझना, क्या समझना, गोपी जन बल्लभ जैसे हैं वो तुम्हारे प्राण बल्लभ है, इसी रूप में उनकी आराधना करना। जब ये बतला रहे हैं तो वो उस लोक में यदि गोलोक वृंदावन में गए होंगे तो किस भाव से, सनातन गोस्वामी स्पष्ट कह रहे हैं जब उसी भाव को, ये मंजरी भाव जो कह रहे हैं उसी भाव में गए होंगे, दूसरे भाव में नहीं। ये सब सुनने का ये सब फल है। तो इसलिए मैं आज, बहुत रात हो गई, कल हम लोग फिर विचार आए यहाँ पर उपस्थित होंगे, मैं विद्वानों से, हमारे ये पास ही के निकट ही में रहते हैं, इनसे फिर निवेदन करूंगा और लोगों से भी निवेदन करूंगा, इनको भी समय होगा तो ये सब चीजें फिर से उपस्थित करके नए नए रूपों में ये वर्णन करेंगे और हम लोग इस भक्ति में रहेंगे। इसलिए इन्होंने कहा कि महाप्रभु के परिकर लोग इन चीजों को दे सकते हैं, इसलिए इन लोगों में ही सामर्थ्य है, ये लोग साधन भजन करके उसका फल हम लोगों को लिए दे रहे हैं। रूप गोस्वामी के संबंध में तो हमारा यही कहना है, सवेरे भी हमने कुछ बतलाया था, कल भी सब लोग बतलाएंगे, हम भी कुछ बोलेंगे, किंतु जंकली रूप शरीर न धार तम ब्रज प्रेम महानिधि कपाट कौन उघार। मैं समझता कि यही बहुत अधिक है। महाप्रभु ही आए, इन्होंने बतलाया और इस प्रेम महानिधि के कपाट को उभारते नहीं, उनके आदेश से, उनकी प्रेरणा से, उनकी कृपा से, और अपने जितने भी परिकर हैं स्वरूप दामोदर राय रामानंद, वहां पर ये पुंडरीक विद्यानिधि भी होंगे, बक्रेश्वर पंडित भी होंगे और सब परिकर लोग थे वहां पर, सब लोगों से निवेदन किया कि रूप के हृदय में आप लोग शक्ति का और अपनी कृपा का संचार करें, जिससे ये हमारे भावों को जगत में, केवल अपने से ही संतुष्टि नहीं हुई, क्यों नहीं, कुछ कारण था, इन कारण पर ये इन्होंने थोड़ा सा विचार किया, जो कृष्ण नहीं दे सकते, जो राधा जी भी नहीं दे सकती है? उसको महाप्रभु दिया, और महाप्रभु भी नहीं दे सके उसको कौन दिया, ये रूप गोस्वामी ने, रूप मंजरी भी नहीं दे सकेगी, उनके लिए भी ये संभव नहीं, तो ये दिया कौन, हम जैसे तुच्छ लोगों पर कृपा करने के लिए ही ये महाप्रभु जी का आदेश उन पर हुआ, सारी शक्ति दे करके, वो जो हमारे कवि कर्णपुर ने रूप गोस्वामी के दैतर स्वरूपे निजानुरूपे ततान रूपे सबिलास रूप, ततान रूपे माने क्या, उनके अंदर में सारी अपनी जो कृपा शक्ति थी उसका संचार किया, इसलिए सोचा जब मैं तो नहीं दे सकूंगा, क्यों नहीं दे सकूंगा, भट्ट जी ने बड़ा सुंदर उसका जवाब दिया, वो तो रसास्वादन में ऐसे प्रमत्त हो गए, तीनों भाव, सखी भाव भी, मंजरी भाव भी, राधा भाव भी, तीनों भावों में कभी कभी किए सखी, विशेष करके राधा भाव और स्वादन में ही रहे तो अभी कभी कभी सखी भाव को भी, और कभी कभी मंजरी भाव में रहे। रूप गोस्वामी के ऊपर में सारी कृपा उन्होंने, स्फूर्ति उन्होंने कराई। उन्होंने ये सब ग्रंथ लिखे, एक एक चीज की परिभाषा दी। श्रद्धा किसको कहते हैं, परमार्थिक श्रद्धा किसको कहते हैं, निष्ठा किसको कहते हैं, रुचि किसको कहते हैं, साधन किसको कहते हैं, ये सब बड़ी बड़ी चमत्कार चीजें। साधन में वो यदि भाव को लक्ष्य यदि न किया जाए तो वो साधन नहीं होगा। नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यं कृति साध्या भवेत साध्य भाव। ये सब कौन चिंतन करता रूप गोस्वामी के अतिरिक्त? साध्य भाव किसको कहते हैं, किसको कहते हैं, भाव किसको कहते हैं, स्नेह किसको कहते हैं, मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव मादन मोदन मोहन मादन, ये सब का डिफिनेशन कौन दिया? भक्ति का डिफिनेशन कौन दिया? एक एक चीज का समझाने के लिए एक एक जो ये भाव इत्यादि हैं, एक एक परिभाषा दी। जगत में ऐसा कौन किया? महाप्रभु जी को समय नहीं ये सब दे दें, किंतु उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की उनकी फूर्ति कराने के वजह से रूप गोस्वामी जी जगत को ये दान दिया। इसके पहले महाप्रभु के पहले, रूप गोस्वामी के पहले भक्ति तो थी, भक्ति रस नहीं था। इसलिए बतलाया, ओ नीर क्षीर हंसन को पान कौन कराय। यहां पर नीर क्षीर जगत में मिला हुआ है, कैसे? भक्ति, शुद्ध भक्ति, उसके साथ में कर्म मिश्रा, ज्ञान मिश्रा इत्यादि भक्ति कितनी सब मिली हुई, स्वरूप आरोप सिद्धा, संग सिद्धा और सब भक्तियां स्वरूप सिद्धा के साथ में मिली हुई हैं। इनका अलग अलग वर्णन करके कौन समझाता? आज तक किसी ने समझाया? पानी है, चीनी है, नींबू भी है, कपूर भी है, सब कुछ है, कितने अंश में कितने कैसे मिलाने से स्थाई भाव के ऊपर में ये सब चीजें होती हैं, ये कौन समझाता? इसलिए उन्होंने ठीक कहा, रूप गोस्वामी ने साधकों को ये सब प्रक्रियाएं दी। यदि ऐसे गुरु हो, तत्त्व गुरु हो, ऐसे वैष्णव हो जो रूप गोस्वामी के इन ग्रंथों को समझ करके, साधन करके यदि हम लोगों को कुछ दे सके तो हमारा उपकार हो सकता है, अन्यथा होना बड़ा भारी मुश्किल है। इसलिए संक्षेप में आज यही कह करके अपना वक्तव्य मैं समाप्त करता हूं कि ये श्री रूप गोस्वामी श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितं जीन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम तदा दिशपदांतिक। अपने चरण कमलों को कब हमारे हृदय में प्रदान करें? उनकी चरणों की धूली हम कम अपने हृदय में धारण कर सकते हैं? हम यही प्रार्थना, चरणों की धूली क्या, यही जो राधा भाव, सखी भाव, मंजरी भाव, भक्ति इत्यादि का जो विचार उन्होंने दिया है? यही सब भावों का जो दिया, यही उनकी कृपा है। तो आज उनके चरणों में केवल अपने लिए ही नहीं, आप सब लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं, ऐसे रूप गोस्वामी जी हमारे हृदय में स्फूर्ति हरे। आप लोगों को भी मैं सोचता हूं कि यदि यह भी अच्छा रहेगा, जो भविष्य में आने वाले जो हम भक्त हैं उन पर भी वो कृपा करें, केवल हमारे ऊपर। यही कह करके मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।
ये आशीर्वाद बहुत सुंदर है।
मैं कल सब लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोग कल 5 बजे फिर पधारिए, ऐसे ही सुंदर कथाएं होंगी, बल्कि इन लोगों ने जो कहा है सूत्र रूप में उनको और भी प्रस्फुटित करके और अच्छी रूप से आप लोगों के सामने हम लोग परिवेशन करने की चेष्टा करेंगे। इसलिए आप लोग आएंगे, आपको आप लोगों को देखने से ही हृदय में स्फूर्ति होगी कुछ वर्णन करने की। इसलिए आप लोग को भी, आप लोग भी वंदनीय हैं, श्रोता भी, वक्ता भी, स्थान को में आयोजन करने वाला सभी लोगों को लिए प्रणाम की बात कही गई है ना, वो है ना कौन सा श्लोक? ज्ञानी प्रयास उत्पाश्य नमंत एव जीवंती सन्मुखरितां भवदीय वार्ताम स्थाने स्थिता तनुवांग मनोभी प्रायशो अजीत उस कथा को उस कथा वाचक को श्रवण करने वाले मैं समझता है कि श्रवण करने वाले का अधिक महत्व है। यदि श्रवण न करने वाले आए तो वक्ता क्या कर सकता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि पहले ये श्रोता लोग ही वंदनीय है, इसके बाद में वक्ता वंदनीय है। मैं ऐसे श्रोता वक्ता हूँ और सबको मैं वंदना करके आज का वक्तव्य समाप्त करता हूँ। कल आप लोगों से फिर निवेदन है कि जरूर पधारेंगे, आपसे विशेष करके आप हमारे पड़ोसी हैं और आपको भी समय मिलेगा। एक कीर्तन कर दीजिए आपको शास्त्रीय प्रमाणों के आधार पर प्रमाणित कर सके। यदि रूप गोस्वामी के पहले यदि कोई पारखी भाव कहता है